તારીખ 30/12/1994 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા દેવલાલીમાં થયેલ તત્વચર્ચા મૂળ કેસેટમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે સળંગ નંબર 61
સરળતા સે મધ્યસ્થતા ઓર વિશાલતા કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ એ વિશે ચલા आगे की बात है। चार गति में तिर्यंज गति में आचार्य महाराज ने जो प्रतिपादन किया उसका पुनरावर्तन करके आगे का विषय लेते हैं कि जो मोक्षार्थी जीव होता है जिसका प्रयास मोक्ष के लिए ही होता है यानी कि जिसका प्रयास परिपूर्ण शुद्धि के लिए होता है परिपूर्ण सुख के लिए होता है ऐसे जीव को यहाँ मोक्षार्थी कहने में आया है। मोक्षार्थी माने क्या? दुख से मुक्त होना चाहता हो, परिपूर्ण रूप से दुख से मुक्त होना चाहता हो, दोष से पण परिपूर्ण रूप से भी दोष से भी परिपूर्ण रूप से मुक्त होना चाहता हो और दोष के फल स्वरूप परिभ्रमण है उससे भी मुक्त होना चाहता हो, वो मोक्षार्थी जीव सबसे प्रथम आत्मा को जानेगा। जान करके अनुभव करके जो अनुभव में आया है ऐसा ही मैं हूँ और ऐसा अनुभव करने से मेरा जो ध्येय मुक्ति का है वो बन पाएगा हो सकेगा, इसलिए मुझे मेरे आत्मस्वरूप में ही लीन रहना चाहिए, इसका ही अनुचरण करना, मैंने आचरण करना, लीन रहना, इससे मेरी जो मुक्ति की अभिलाषा है वो परिपूर्ण होगी, दूसरे प्रकार से नहीं होगी। इतनी बात चली है। अब कहते हैं कि ऐसा आत्मा को जानने का प्रयोग कैसा है? आत्मा को जानने का प्रयोग किस प्रकार का होता है इसका बहुत सुंदर विवरण प्रयोगात्मक पद्धति से यहाँ पर आचार्य से कह रहे हैं। कहते हैं कि जब आत्मा को मैंने कब कि हर समय में आत्मा को आई रहा है, जब आत्मा को आई रहा है ये भाव, कौन से भाव? कि अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभाव, गुण रूप भेदभाव नहीं लिए, अनेक पर्याय रूप भेदभाव लिए हैं, पर्याय रूप भेदभाव लेने से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पर्याय की बात क्यों आ रही है, हमको तो आत्मा को जानना है, द्रव्य को जानना है। ये विचार का जो तरीका है वो सही नहीं है। विचार का तरीका ऐसा होना चाहिए कि कैसे काम होता है। आचार्य श्री तो अनुभवी पुरुष है, वो अनुभव से बात करते हैं, द्रव्य को दिखाने के लिए भी पर्याय से बात कर रहे हैं, तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए किसको जानना है। आत्मा को जानना है। आत्मा को यथार्थ प्रकार से जानना माने अनुभव में लेना, उसकी जो कार्य पद्धति है तो कार्य पद्धति अनादि अनंत एक ही प्रकार की है और यही प्रकार आचार्य महाराज यहाँ प्रसिद्ध रूप से दर्शाते हैं। गुरुदेव भी कहते थे कि द्रव्य को जानने का बिना पर्याय कोई तरीका नहीं है। बिना पर्याय द्रव्य को जानने का कोई प्रकार हो ही नहीं सकता है। सिद्धांत पद्धति से ऐसी बात करते थे कि नित्य को अनित्य के द्वारा ही जाना जाता है। जानना है नित्य द्रव्य को, ध्रुव द्रव्य को, लेकिन वो अनित्य के द्वारा ही, अनित्य के माध्यम से ही जाना जाता है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। इसलिए द्रव्य दृष्टि करनी है उसको तो पहले स्वानुभव में ही द्रव्य दृष्टि होता है, होती है, ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है, ऐसा ही क्रम है। तो पहले पर्याय के माध्यम से द्रव्य को जानना होगा। वो कैसे? अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभाव, भेदभाव मैंने विभिन्न प्रकार के भाव, पर्याय में विभिन्न प्रकार के भाव है अनुभव में आ रहे हैं। किस प्रकार से अनुभव में आ रहे हैं? कि उनके साथ मिश्रित पना है, दो जाति के परिणाम है, तो आपस में मिश्रित रूप से अनुभव में आ रहे हैं। दो जाति के दो रूप में अनुभव में नहीं आ रहे हैं। ये हमारी अनादि से ज्ञान अवस्था है कि है दो प्रकार के भाव, दोनों का स्वाद माने अनुभव, अनुभव माने स्वाद, भिन्न भिन्न है, एक प्रकार का नहीं है, भिन्न भिन्न है। फिर भी हम उसकी जाति को नहीं पहचानते होने से हम उनको मिश्रित रूप से, एक रूप से स्वाद में ले रहे हैं, अनुभव में ले रहे हैं। इसका आस्वादन भिन्न भिन्न हमको नहीं आ रहा है। भले ही ऐसी परिस्थिति हो, फिर भी वो दोनों मिश्रित हुए नहीं है। अनुभव में मिश्रित रूप से आते हैं, लेकिन मिश्रित हुए तो नहीं है। अगर मिश्रित हो जाते तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, लेकिन मिश्रित नहीं हुए हैं, न हो भी सकते हैं। इसलिए हमारा जो अनुभव में मिश्रित पना है, यही मिथ्या अनुभव है हमारा। ये अनुभव मिथ्या है। मिश्रित हो जाते और मिश्रितपना का अनुभव होता तो अनुभव को मिथ्या नहीं कह सकते, वो सही बात है, क्योंकि मिश्रित हो गए तो मिश्रित ही अनुभव में आएंगे। जबकि मिश्रित हो ही नहीं रहे हैं फिर भी मिश्रित अनुभव में आते हैं, तो ये अनुभव गलत है, मिथ्या अनुभव है, और इसी को ही अज्ञान कहते हैं, उसी को ही अज्ञान कहते हैं। और जहां जहां अज्ञान होता है वहां वहां श्रद्धा श्रद्धा भी मिथ्या ही होती है। जहां अज्ञान और मिथ्या श्रद्धा होती है वहां बताने की आवश्यकता नहीं है कि आचरण मिथ्या ही होता है। इसलिए जिनको आत्मज्ञान नहीं है, आत्मानुभव नहीं है, सम्यक श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है, तो बाहर में जिसको चारित्र बोलने में आता है, व्यवहार से दीक्षा धारण करते हैं, नग्न दिगंबर हो जाते हैं और 28 मूल गुण का पंच महाव्रत का निरतिचार पालन करते हैं, फिर भी उसको चारित्र कहा नहीं जाता, उसको चारित्र नहीं कहा जाता, क्योंकि श्रद्धान ज्ञान बिना चारित्र हो ही नहीं सकता। तो उस तरह से श्रद्धान ज्ञान पूर्वक चारित्र मैंने आचरण कैसे हो, जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहने में आता है, ये आचार्य महाराज यहां समझाते हैं। ये अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के भाव में भाव हैं, उनके साथ अनुभव में मिश्रित पड़ा होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीण पड़ा से, क्या कहते हैं, जो भेद ज्ञान करने के लिए प्रवीण मैंने कुशल है, एक्सपर्ट है, वो भेद ज्ञान करता है। वो भेद ज्ञान करने में प्रवीण नहीं है, वो भेद ज्ञान नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? कि जिसकी भेद संवेदन शक्ति कुंठित हो गई है वो। ये बात आचार्य महाराज ने 97 गाथा में कही है, कर्ता कर्म अधिकार की जो 97 गाथा है, जिसके पास ग्रंथ हो वो देखें कि उसमें यह आत्मा अज्ञानी होता हुआ अज्ञान के कारण से अनादि से, अनादि संसार से लेकर के मिलित स्वाद का, मिश्रित स्वाद का स्वादन अनुभवन करता होने से, कर रहा होने से, यानी वो मिश्रित स्वाद का अनुभवन करते कर रहा होने से जिसकी भेद संवेदन की शक्ति कुंठित हो गई है। भेद संवेदन की शक्ति शक्ति बिड़ाई गई है, हम कहे जुदो जुदो स्वाद लेवानी शक्ति यानी बिड़ाई गई है। क्यों क्यों कुंठित हो गई है? कि उल्टा प्रयोग कर रहा है। इसलिए हमारे परिणमन में उल्टा प्रयोग तो चल ही रहा है अनादि से। वो भिन्न भिन्न भाव है, उनको अभिन्न रूप से अनुभव में लेने का हमारा प्रयोग प्रैक्टिस उल्टी अनादि से चल रही है। और अनादि से बहुत प्रैक्टिस होने से भिन्न भिन्न स्वाद करने के लेने की हमारी जो शक्ति है, शक्ति है तो सही लेकिन वो कुंठित हो गई है। इसलिए हमें भिन्न भिन्न स्वाद करने का प्रयास करने की प्रैक्टिस करनी होगी, विचार करना होगा। नहीं
एक समय में दो स्वाद या कौन दो हो सकते?
एक क्षण में जो दो है वो दो क्यों नहीं भाव अनुभव में आएंगे? दो एक रूप अनुभव में आते हैं। एक क्षण में दोनों दो रूप अनुभव में आते हैं, ये अनुभव करने की बात है। कैसे? कि ज्ञान को तो ज्ञान का अनुभव है, तो जो ज्ञान को ज्ञान का स्वयं का अनुभव है उसमें वो ज्ञान राग का अनुभव नहीं करता है। ज्ञान का अपने रूप स्वयं के रूप में ज्ञान अनुभव करे वो तो सही है, सम्यक है, और उसमें राग का अनुभव नहीं हो रहा है वही उसका भेद ज्ञान भेद संवेदन है, तो ऐसा होने में क्या आपत्ति है बताइए? कि उसको होने में तो कोई आपत्ति नहीं आती। इसलिए वो प्रवीण पड़ा इसलिए लिया है कि जो प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट होते हैं, बिना प्रैक्टिस कोई किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, और खास करके जो प्रयोग का विषय है उसमें तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। चाहे हम साइकिल चलाएं, चाहे हम कार चलाएं, चाहे हम रोटी बनाएं, बिना प्रैक्टिस वो काम हो पाएगा नहीं। जानकारी पहले हो जाएगी कि ऐसे साइकिल चलानी चाहिए, गाड़ी ऐसे चलानी चाहिए, रोटी ऐसे बनानी चाहिए, लेकिन उसकी जानकारी से वो काम नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से वो काम होता है। बिना प्रैक्टिस हाथ बैठता नहीं है उस काम पे। इसलिए मुमुक्षु जीव मोक्षार्थी की भूमिका में पहले भेद का ज्ञान की प्रैक्टिस करता है। वो किस प्रकार से करता है वो बात कहेंगे आचार्य महाराज। यह अनुभूति है यही मैं हूं, अवतरण चिन्ह में वो बात लिया है क्या। परम विवेक कौशलेन, कुशलता है, परम विवेक कौशलेन, वेद ज्ञान का नाम लिया है परम विवेक। ज्ञान को, ज्ञान वेदन को अपने रूप में अनुभव करना वो परम विवेक है। संस्कृत शब्द वो पड़ा है, परम विवेक कौशलेन अयम अहम अनुभूति, अयम अहम अनुभूति, यह जो अनुभूति है वही ही, वही ही मैं हूं, वही मैं हूं। अनुभूति क्या है? ज्ञान के, ज्ञान वेदन की जो क्रिया है वो अनुभूति है। ज्ञान में, ज्ञान वेदन की जो क्रिया है वो अनुभूति है। और आचार्य महाराज आगे कहेंगे कि वो सबको है। क्या? आबाल गोपाल सबो को है। हाँ, जो ज्ञान वेदन है वो स्वभाव जाति की पर्याय है। रागादि विभाव है वो विभाव जाति की पर्याय है। हमारी परिस्थिति ऐसी है कि ज्ञान वेदन को चूक करके राग को अपने रूप अनुभव कर रहे हैं, यही अज्ञान है, यही मिथ्या है। लेकिन फिर भी वहां अज्ञान दशा में भी ज्ञान में ज्ञान वेदन का अभाव कभी भी हुआ नहीं है, प्रकट रूप से। वेदन तो प्रकट ही होता है, बात पर्यायों की चलती है। वो तो पहले स्पष्ट किया, पर्याय रूप भिन्न भाव, भिन्न भिन्न प्रकार, दोनों जाति तो भिन्न भिन्न है, तो दोनों भिन्न भिन्न जाति पर्याय रूप है, या वो कहने का मतलब है, पर्याय रूप भिन्न भाव का अनुभव हो रहा है, भिन्न भिन्न जाति के भावों का। लेकिन क्या है, कारण भी कहेंगे कि परद्रव्य के साथ एकपणा का निश्चय होने से अनुभूति ही मैं हूं ऐसा हम ग्रहण कर सकते नहीं, यानी भेद संवेदन शक्ति कुंठित हो गई है। उल्टा प्रयोग के कारण से भेद संवेदन शक्ति है वो खत्म हो गई है, तो उसको जागृत करना है प्रैक्टिस करके। तो उस विषय में बहुत से प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए आते हैं कि मोक्षार्थी हुए बिना इस प्रकार का प्रयोग कैसे हो वो अनुभव पद्धति से समझ में नहीं आता है।
बराबर।
फिर से कि मोक्षार्थी हुए बिना ये जो ज्ञान वेदन रूप जो ज्ञान क्रिया है उसमें मैंपना करने रूप जो प्रयोग है वो प्रयोग अनुभव पद्धति से समझ में नहीं आता है। इसलिए कृपालु गुरुदेव ने वो बात कही कि पहले तुम मोक्षार्थी हो जाओ, पहले मोक्षार्थी हो जाओ, पूर्णता के लक्ष्य के बिना तुम्हारा काम आगे बढ़ने वाला नहीं है।
द्रव्यलिंग को धारण किया तो मोक्षार्थी नहीं हुए क्या?
नहीं हुए। क्यों? कि उसका लक्ष्य बाह्याचरण पर था, बाह्य त्याग पर था। भीतर में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन कैसे होता है उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। आप दूसरा आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट कर सकते हैं कि द्रविलिंगी ने शास्त्र भी तो पढ़ा था और उस शास्त्र में वेद ज्ञान के प्रयोग की चर्चाएं भी जगह जगह आती हैं, सारे समय सार में तो सभी अधिकार में है, तो क्या समय सार नहीं पढ़ा होगा? हाँ,
ये समय साल भी पड़ा होता है, फिर क्यों नहीं होता है? तो प्रयोग नहीं करता है तो नहीं होता है,
बराबर।
प्रयोग नहीं करता है तो नहीं होता है, यानी जानकारी रूप क्षयोपशम ज्ञान पर लक्ष्य, वो ज्ञान गुण का क्षयोपशम होता है, और कषाय की मंदता रूप चारित्र गुण का क्षयोपशम,
बराबर,
उसमें वो संतुष्ट है। क्या तकलीफ है? उसमें वो संतुष्ट है, और ये संतुष्ट होने का परिणाम दर्शन मोह को वृद्धिगत करता है।
बहुत अच्छी बात है।
एक तो पर्याय बुद्धि है, और पर्याय के क्षोभ में संतुष्ट होना ये पर्याय बुद्धि को दृढ़ करने की बात है। तो इसलिए उनको सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक ज्ञान नहीं होता, तो सम्यक चारित्र भी नहीं होता। वो बात तो रही द्रविलिंगी की बात, वो समर्थ दृष्टांत है द्रविलिंगी की बात, द्रविलिंगी के पास रही। गुरुदेव की कृपा से हम भी ये बातों को समझते हैं, भले आचरण के विषय में हमारा उतना चारित्र का गुण का क्षोभ नहीं है, लेकिन ज्ञान का तो क्षोभ है। तो कोई जानकारी से काम हो गया हमारा?
नहीं
हुआ। हमने भी समयसार पढ़ा, समयसार सुना, श्री गुरु के मुख से सुना, काम हमारा क्यों नहीं हुआ? उसकी तलाश हमें करनी चाहिए।
बहुत तो पहली शर्त है मोक्ष कामेन पूरी नहीं,
मोक्ष कामेन की, मोक्षार्थी हुए क्या? जो मोक्ष कामेन ऐसा कहते हैं आचार्य श्री, तो हम मोक्षार्थी क्यों नहीं होते हैं? मोक्षार्थी होते नहीं, और भेद ज्ञान का विषय की जानकारी कर लेते हैं, पर विज्ञान कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी भेद संवेदन शक्ति कुंठित हो गई है। मोक्षार्थी होगा वही अवलोकन पद्धति से भिन्न भिन्न भावों को पहचानेगा, और पहचान करके उसका भेद ज्ञान करेगा, तो उस भेद ज्ञान के फल में आत्मज्ञान और सम्यक दर्शन आएगा।
बराबर,
ऐसी बात है। स्वरूप निश्चय के पहले, भाव भाषण के पहले, ठीक है, स्वरूप निश्चय के पहले, पूर्णता के लक्ष्य के बाद, वो तो लिखा है बराबर, हाँ हाँ ठीक है, पूर्णता के लक्ष्य के बाद और स्वरूप निश्चय के पहले, ऐसा लेना है, ठीक है। पूर्णता का लक्ष्य जिसको मोक्षार्थी हो गया, मैं तो प्रश्न पढ़ता हूं अभी, और स्वरूप निश्चय नहीं हुआ हो, भाव वासन नहीं हुआ हो, जो भेद ज्ञान होता है वो स्वरूप निश्चय के बाद तथा स्वानुभूति के पहले तथा स्वानुभूति के बाद जो भेद ज्ञान चलता है उसमें क्या अंतर है, सब विस्तार स्पष्ट कीजिए। तो तीन प्रकार के भेद ज्ञान का प्रश्न है, प्रश्नकार ने तीन प्रकार के भेद ज्ञान का प्रश्न पूछा है, कि एक तो जिसको मोक्ष कामिन मोक्षार्थी हो गया वो भेद ज्ञान की प्रैक्टिस करता है, तो उनको भेद ज्ञान की प्रैक्टिस करते करते स्वरूप का लक्ष्य होता है, स्वरूप की पहचान होती है, स्वरूप का भाव भाषण हो जाता है, इसके बाद भी उसको भेद ज्ञान की प्रैक्टिस चलती है, तो उसको उस प्रैक्टिस के दौरान स्वरूप अनुभव हो जाता है, सम्यक दर्शन होता है, और इसके बाद भी भेद ज्ञान चलता है। ऐसे भेद ज्ञान के तीन स्टेज है, और तीनों स्टेज में किस प्रकार के भेद ज्ञान का स्वरूप है या अंतर किस प्रकार का है, ऐसा एक प्रश्न है। क्योंकि भेद ज्ञान का प्रकरण चल रहा है तो विषयांतर तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा स्पष्टीकरण में समय तो ज्यादा जाएगा, आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जो स्वरूप लक्ष्य के बाद भेद ज्ञान करता है, मैं पहले से ले कि जो पूर्णता के लक्ष्य के बाद और स्वरूप लक्ष्य के पहले भेद ज्ञान करता है, उनको वेद ज्ञान वास्तविक रूप में नहीं होता, लेकिन अवलोकन होता है। पहले उसको अपने परिणामों में क्या क्या अनुभव हो रहा है इसका अवलोकन माने निरीक्षण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। ऐसा निरंतर यानी अच्छे प्रमाण में लगातार चलने के बाद वो अनुभव से पहचान आती है कि इसमें दो जाति के भाव अनुभव में आ रहे हैं। जितने भी हमारे विभिन्न प्रकार के विकार विभाव कषाय हैं, उनकी एक जाति है। समूह में एक ही तीन प्रकार के कॉमन फैक्टर देखने में आते हैं सभी विभाव में, चाहे हास्य का हो चाहे शोक का हो, दोनों कषाय है। लेकिन उसमें आकुलता है, उसमें मलिनता है, और हमारे से विरुद्ध होने से वो हमको जचता नहीं है, रुचता नहीं है, क्योंकि वो हमारे स्वरूप से विरुद्ध है। तीन मुद्दे उनको अनुभव में आते हैं विभाव परिणामों में, सभी में तीन तो होते ही है। और ज्ञान में ज्ञान वेदन से स्वभाव जाति की पहचान आती है, तो वहां से उनका वेद ज्ञान चालू होता है कि ये जो वेदन है सो ही मैं हूं, और मेरे ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो, बाहर में उदय अनुकूलता का हो प्रतिकूलता का हो, बाहर में राग का प्रकार हो द्वेष का प्रकार हो, मेरा जो ज्ञान है वो असंग तत्व है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान तो ज्ञान ही रहता। तो उस प्रकार की प्रैक्टिस चलती है। हाँ, वेदन है वो फीलिंग टाइप का, वेदन तो फीलिंग से ही अनुभव में आता है। तो पहले तो जाति का फर्क आने से वेद ज्ञान इस प्रकार का चलता है कि मेरे में कुछ नहीं हो रहा है, ज्ञान में कुछ नहीं हो रहा है, यानी मेरे में कुछ नहीं हो रहा है। ये हरक के परिणाम भी फालतू के है, क्योंकि मेरे में कुछ आया नहीं, मुझे कुछ मिला नहीं। ये शोक के परिणाम भी फालतू के हैं, क्योंकि मेरे में से कुछ गया नहीं। राग के परिणाम भी व्यर्थ है, क्योंकि इससे कोई मुझे मिलता नहीं। राग क्या है? पर अभिलाष, दूसरे पदार्थ के अभिलाष को राग कहते हैं। तो उस राग से भी मुझे तो कोई मिलता नहीं, वो तो दुख रूप है, मलिन है, विपरीत है, ऐसा दिखता है। तो उस तरह से उनको भिन्न रूप से वो अवलोकन रूप वहां भेद ज्ञान का प्रकार चलता है। यहां से ज्ञान में से जो ज्ञान की सतत धारा चली आ रही है, ये जो ज्ञान का सातत्य है, उससे ज्ञान की अनंतता का निश्चय होता है। और ज्ञान निष्कषाय एकषाय स्वरूप होने से उसका सुख रूप दिखता है, और इस सुख की भी अनंतता का एहसास आता है, तब स्वरूप लक्ष्य होता है। और स्वरूप लक्ष्य होता है तब अपना परिपूर्ण अखंड शुद्ध आत्मा सिद्ध आत्मा परमात्मा जैसा है वैसा, बिल्कुल जैसा है वैसा लक्षण से लक्ष्य में आ जाता है। और लक्ष्य में आने से नजर में नजर वहां से खिसकती नहीं, यानी आत्मा खिसक सकता नहीं, लक्ष्य में से आत्मा खिसक सकता नहीं, उतनी एक पकड़ आती है। बहुत महिमा आती है, क्योंकि महिमावंत पदार्थ है, अनंत महिमावंत पदार्थ है, अनंत गुण से समृद्ध पदार्थ है। वो अनंत गुण की समृद्धि के कारण से उसकी महिमा बहुत है, और उसकी महिमा जैसा है वैसा भाव वासन होने से महिमा बहुत जोर से आती है। जब बहुत जोर से महिमा आती है तो भेद ज्ञान और सहज रूप से चलने लगता है। इसके पहले उतनी सहजता नहीं थी, कुछ न कुछ कृत्रिम रूप प्रयास भी साथ में होता था कि मैं ऐसे भिन्न करूं, ऐसे में देखूं, मैं ऐसे अवलोकन करूं, उस प्रकार से विकल्प के साथ थोड़ी कृत्रिमता उसमें रहती है, क्योंकि ऊपर ऊपर का भेद ज्ञान है। अब अंदर से भेद ज्ञान आएगा, स्वरूप लक्ष्य होने से अंदर से भेद ज्ञान होगा, वो सहज होगा। वो सहज इस प्रकार का होता है कि अनुभूति है, ज्ञान है सो मैं हूं, रागादि है सो मैं नहीं हूं। लेकिन इसमें विधि निषेध में अंतर रहता है, समयांतर रहता है। राग है सो मैं हूं ऐसा भी भाव आता है, और क्रम से ज्ञान है सो मैं हूं ऐसा भाव विधि का आता है। विकल्प की उत्पत्ति बंद हो जाती है, उसको निर्विकल्प स्वानुभव या निर्विकल्प सम्यक दर्शन कहने में आता है। तो क्षणार्थ के लिए, बहुत अल्पकाल के लिए आ जाता है, फिर वही सम्यक दृष्टि स्वविकल्प दशा में आता है। जब वो सम्यक दृष्टि स्वविकल्प दशा में आता है तो उसको ज्ञान वेदन की ज्ञान धारा और राग भिन्न भिन्न सहज रूप से अनुभव में आती रहती है, एक ही काल में समकाल में, उसमें क्रम पड़ता नहीं है। ऐसे तीन प्रकार के भेद ज्ञान के प्रयास में परिणमन का स्वरूप है। ये प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर है। आता है तो मैंपना तो त्रिकाली में ही आता है, उसको जानने वाला कहो या त्रिकाली कहो। निर्विकल्प दशा में मैंपना नहीं आता है, यानी वेदन की पर्याय में मैंपना नहीं आता है, लेकिन वेदन की पर्याय में जो द्रव है, स्वभाव है, उसमें मैंपना आता है। स्वभाव द्रव में भी है, स्वभाव गुण में भी है, और स्वभाव वेदन की पर्याय में भी है। स्वभाव न द्रव रूप है, न स्वभाव गुण रूप है, न स्वभाव पर्याय के भेद रूप है। तीन में से एक भी भेद रूप नहीं है, वो अनुभव स्वरूप है। इसलिए मैंपना तो स्वभाव में आता है, जो जानने वाला है उसमें आएगा मैंपना। अखंड है, तीनों में तीन भेद रूप होता तो खंड हो जाता है। इसलिए स्वभाव न नित्य है, न स्वभाव अनित्य है, अनुभव स्वरूप है। वो विषय पंचाध्यायी में, उत्तरार्ध में 561-562 गाथा में लिया है पंचाध्यायी कार ने, और समय सार में 143 कलश के बाद जो 26 कलश है, 25 या 26 कलश, उसमें अमृत चंद्राचार्य ने लिया है। खलुचिच देव, भेद भी नहीं, अभेद भी नहीं, शुद्ध भी नहीं, अशुद्ध भी नहीं, नित्य भी नहीं, अनित्य भी नहीं, ऐसे करके 25-26 कलश लिया है। वो यही विषय का है। और कृपालु देव ने आत्मसिद्धि में वो बात लिया है, सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाए, कोई भी अवस्था हो, निरोध से लेकर के सिद्ध पर्याय तक, न्यारा ही न्यारा स्वभाव है, स्वभाव स्वभाव है, स्वभाव पर्याय रूप नहीं होता। और हमने जो 14 गाथा का भावार्थ लिया, वहां जयचंद जी ने लिया है सर्व पर्यायों में एक रूप। क्या लिखा था वहां? सर्व पर्यायों में एक रूप शब्द आया था, ध्यान भी खींचा था कि देखो यहाँ क्या क्या कहते हैं। पर्यायों में पर्याय रूप नहीं, अनुभूति में पर्याय रूप नहीं, अनुभूति में भी पर्याय रूप नहीं, लेकिन वहां अनुभूति और आत्मा में विधि की प्रधानता से भेद छाटा जाता नहीं है। अनुभूति सोई में हूं, वही आत्मा है ऐसा बोलने में आता है, क्योंकि वहां स्वभाव है, अनुभूति में स्वभाव व्यक्त है। हाँ, निरंतर ज्ञान धारा और कर्म धारा साधक अवस्था में चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 4, 5, 6 तीनों गुण स्थान में जहाँ बुद्धिपूर्वक का राग होता है वहां दोनों धारा भिन्न भिन्न चलती है। तो आप जो मैकेनिकल इंजीनियर जो इंजन होते हैं ना मशीनरी, उसमें गियर व्हील होते हैं, गियर व्हील कहते हैं ना, तो दो व्हील्स, दो जो गियर व्हील है वो कैसे फिरते हैं, व्हील्स इन गियर, व्हील्स इन गियर, एक उधर चलता है एक उधर चलता है, दोनों एक दूसरे में भिड़ाते हैं, दोनों के गियर के जो आटे हैं एक दूसरे में भिड़ाते हैं, एक उधर चलता है एक उधर चलता है। ऐसे ज्ञान दशा में राग उधर चलता है, ज्ञान उधर चलता है, एक बहिर्मुख अंश है एक अंतर्मुख है,
धन्यवाद,
वो चलता रहता है, दोनों चक्कर चलता रहता है। वो राग है वो परीक्षण होता जाता है और जो ज्ञान वेदन है वो वृद्धिगत पामता जाता है। ये स्थिति साधक दशा की चालू रहती है। स्वाद रूप भिन्नता है, स्वाद रूप भिन्नता भी है और दिशा रूप भी भिन्नता है, एक की दिशा बाहर है एक की दिशा अंदर की है, दिशा की भी भिन्नता है, दोनों की भिन्नता है। और प्रत्यक्ष परोक्षता की भी भिन्नता है, जो वेदन है वो प्रत्यक्ष है और जो उपयोग बाहर जाता है वो परोक्ष है, ज्ञानी का भी जो उपयोग बाहर जाता है वो परोक्ष होता है। और वेदन में ज्ञान वेदन भी है और शांति शांति का भी वेदन है, सुख दुख का भी वेदन है, जितना बाह्य अंश है उतना दुख का वेदन है, जितना अंदर का अंश है उतना सुख का वेदन है, वो भी भिन्नता है। भिन्नता में बहुत सी बातें हैं और जो अंतरंग वेदन है वो मुख्य है, अंतर्मुख वेदन है मुख्य वृत्ति है और जो बाहर जाती है वो गौण वृत्ति है,
बराबर,
उसमें मुख्यता कभी नहीं आती, क्योंकि मैंपना अंतर्मुख में है, तो जहां मैंपना है वही मुख्य होगा, अपनापन में ही मुख्य आता है, अपने लड़के कोई मुख्य करता है, पड़ोसी वाले को कोई करता नहीं है, अपना तो होता है वहां ही मुख्यता होती है, इसलिए वो सहज है। क्या कहते हैं, मोक्षार्थी जीव वेद ज्ञान में प्रवीणपणा से कुशलता से, इन्हें भीतर में बहुत सूक्ष्म ज्ञान का ये प्रयोग है, इसलिए मोक्ष अधिकार में ऐसे ज्ञान को प्रज्ञा क्षेणी की उपमा दी है, क्योंकि क्षेणी की धार पैनी होती है, इसलिए यहाँ ज्ञान सूक्ष्म होता है। तो ज्ञान सूक्ष्म किसका होता है, अगर इसकी चर्चा करें तो, इस प्रश्न की चर्चा करें तो, कि जिसको पर में सुख बुद्धि या रस बुद्धि नहीं हो उसको, जिसको स्वभाव लक्ष्य में आया हो और स्वभाव में सुख बुद्धि हुई हो और राग और पर में सुख बुद्धि और रस बुद्धि नहीं हो, उसी को ही ये ज्ञान सूक्ष्म होकर के भेद ज्ञान की कुशलता प्रवीणता प्राप्त होती है, दूसरे को होती नहीं। तो ये कोई खास प्रकार की योग्यता का विषय है। सामान्य मुमुक्षु जानकारी कर सकता है, मध्यम कोटि का मुमुक्षु जानकारी कर सकता है, लेकिन वो प्रयोग कर सकेगा नहीं, क्योंकि उसमें उत्तम कोटि की मुमुक्षुता चाहिए। जैसे कि कृपालु देव थे, समीचार मिला, वेद ज्ञान पढ़ा, वेद ज्ञान का प्रयोग का विषय पढ़ा और उनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव थे, समीचार पढ़ा, उत्तम कोटि की मुमुक्षुता में आए हुए थे, इसलिए उनको भी सहानुभूति की प्राप्ति हो गई। तो जो उत्तम कोटि के मुमुक्षु हैं, उनको तो समय सार सीधा ही सहानुभूति का निमित्त है। अगर उस कोटि में जो नहीं आए, वो तो भले नीचे की कोटि में रह करके समय सार को कंठस्थ कर ले, कितना भी दृढ़ कर ले, बिना योग्यता अनुभव आने वाला नहीं है। इसलिए ये तो निमित्त है, समयसार तो निमित्त है, लेकिन किसको कि जो उत्तम कोटि का मुमुक्षु है उसको। अगर वो स्थिति नहीं बनती तो मुमुक्षु लोग सारी जिंदगी पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते ही रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन काम होता नहीं है। वो बात समय को अनुभव गोचर है, समझाने की जरूरत नहीं है। तो बात घूम फिर करके पात्रता पे आती है, ये होना चाहिए। तो ऐसे जीव को यह अनुभूति है वही मैं हूं, ये हुआ शब्द, ये तो हुआ शब्द। शब्द का अर्थ समझ सकते हैं क्षोभ में, लेकिन यहाँ परिणमन की बात है, शब्द और शब्दार्थ की बात नहीं है, न भावार्थ की बात है, परिणमन की बात है। परिणमन को शब्द गोचर किया है, अवतरण चिन्ह में परिणमन को शब्द गोचर किया है, अनुभव प्रकाश में दीपचंद जी साहब साध्य साधक भाव करके एक प्रकरण लिखे हैं उन्होंने, उनमें अनेक प्रकार के साध्य साधक भाव के भेद प्रभेद लिखे हैं उन्होंने। उसमें एक भेद बहुत अच्छा लिखा है जो यहाँ हमको समझने में थोड़ा स्पर्श करता है। इस विषय को लिखते हैं वो कि जो शब्द है वो तो साधक है, पर अर्थ है वो साध्य है। शब्द से क्या जाना जाता है, इसका अर्थ जाना जाता है। किसी भी शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है, तो शब्द है वो साधक है और अर्थ है वो साध्य है। जब अर्थ साधक होता है तो साध्य क्या होना चाहिए, वो बहुत सुंदर लिखा है कि जब अर्थ साधक होता है वास्तव में, यथार्थ रूप से, वास्तव में माने यथार्थ रूप से, तो ज्ञान रस साध्य होता है। कैसा लिखा है देखो, अर्थ साधक है और ज्ञान रस साध्य है, तो इसमें से ज्ञान रस पैदा हो जाता है, उसी का नाम स्वाध्याय पद्धति है। क्या शास्त्र की स्वाध्याय पद्धति ज्ञानियों ने कैसे कैसे बताई है।
धन्यवाद
माजी भाई। देखो वो दीपचंद जी थे, करीब 250 साल पहले जयपुर के पास आमेर करके, आज भी इसका किला है, उस वक्त में वो जयपुर राजस्थान की राजधानी होगी, वो आमेर में, आमेर के रईस थे। तो और पुण्य योग कुछ कम लेके आए होंगे, लेकिन बहुत ज्ञानी थे, मैंने इसकी ज्ञान दशा बहुत मजबूत थी,
बराबर
समर्थ ज्ञानी थे।
हाँ जी।
उतना ही नहीं, उनका सिद्धांत ज्ञान बहुत सूक्ष्म था, और वो उसकी जो रचना है, ये अनुभव प्रकाश है, आत्म अवलोकन है, और जो ये चिद विलास है, ज्ञान दर्पण है, ये सब इनकी। उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उसमें अनुभव विलास, आत्म अवलोकन, चिद विलास, परमात्म पुराण, स्वरूपानंद बृहत और स्वरूपानंद लघु, ज्ञान दर्पण, गुणस्थान भेद, उपदेश रत्न और अध्यात्म 25 वगैरह अनेक ग्रंथ की रचना की है। उसमें जो चिद विलास है, ज्ञान दर्पण है, कुछ तो उपलब्ध है, कुछ उपलब्ध नहीं है। चिद विलास तो हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, आप भी हमारे विद्वान चिद विलास को नहीं समझ सके, जो गुरुदेव से परिचित विद्वान है वो भी चिद विलास में चांद नहीं बुढ़े, उतना सूक्ष्म प्रकरण लिखे हैं सिद्धांत के। सिद्धांत के भी इतने ज्ञाता थे, और ठोस अनुभव की अपनी जो परिणति थी, लिखते हैं कि हमने हमारे परिणमन में मोक्ष मार्ग का विजय स्तंभ रोपा है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। वो लड़ाई में विजय स्तंभ रोकते हैं ना, वो मर जाते हैं, यहाँ से पीछे हटने करेंगे। वो जो खुद लिखते हैं, अपने लिए लिखते हैं, बहुत ऐसे है। लेकिन वो लिख गए कि क्या करूं, मेरी बात सुनने वाले आजकल समाज में, संप्रदाय में कोई नहीं है। मूल दिगंबर थे, संप्रदाय में मेरी बात सुनने वाले कोई नहीं है, इसलिए मैं लिख के जाता हूँ, लिख के छोड़ देता हूँ मेरी बात, ऐसा करके लिख दिया है ग्रंथ। वो लिख रहे हैं कि शब्द साधक है, अर्थ साध्य है, और अर्थ साधक है तो ज्ञान रस साध्य होता है, और वही सच्ची स्वाध्याय पद्धति है। ज्ञान का रस आना चाहिए अगर अर्थ सही समझ में आए तो, अगर अर्थ समझते हुए भी ज्ञान रस पैदा नहीं हुआ तो समझ लेना कि अर्थ का साधकपणा वहां नहीं है, वो तो अर्थ बाधकपणे में जाएगा, साधकपणे में नहीं जाएगा, ये बाध्य हो जाएगा, साध्य नहीं होगा। इस तरह से स्वाध्याय करें। कैसी कैसी बातें आई हैं, बहुत बहुत सी बातें लिखे, कि कहीं भेद प्रभेद इतने अच्छे लिखे हैं। एक भेद प्रभेद तो ऐसा भी लिखा है, थोड़ा विषयांतर है, लेकिन थोड़ा जानने लायक चीजें मुमुक्षु को, तो लिखते हैं कि अग्रहित मिथ्या साधक है और ग्रहित मिथ्या तो साध्य है। देखो जो मुमुक्षु या जो भी प्राणी अग्रहित मिथ्यात्व में लंबा काल रहता है वो ग्रहित मिथ्यात्व में आ जाएगा। हाँ, दिगंबर संप्रदाय में भी देव देवियां कहां से आ गई, मंदिर जी में भगवान की वेदी पर कहां से स्थान पाया, मंदिर में जिन मंदिर में कहां से स्थान आया उसका, वो तो संप्रदाय अग्रहित मिथ्यात् का है। लेकिन अग्रहित मिथ्यात् साधक होता है, अग्रहित मिथ्यात् साध्य हो जाता है, कुछ न कुछ कल्पना बन ही जाती है, ऐसा बन जाता है। तत्वाभ्यास में भी ऐसा होता है कि अगर यथार्थ रूप से तत्वाभ्यास करने में नहीं आए तो अभ्यास तो शुरू होता है अग्रहित मिथ्यात् में, और अभ्यास करते करते ग्रहित मिथ्यात् हो जाए, कल्पना हो जाती है, तो ग्रहित मिथ्यात् में आ जाता है, ऐसे लागू पड़ता है। यहां कहते हैं परिणमन का विषय चल रहा है कि यह अनुभूति है वह ही मैं हूं, तो अंदर में वो मोक्षार्थी जीव को ज्ञान वेदन की क्रिया में जो स्वभाव है उसमें मैंपना हो जाता है तब आत्मज्ञान होता है। ऐसा आत्मज्ञान, कैसा आत्मज्ञान? अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कोई दूसरी चीज नहीं है। एक वचन में आत्मज्ञान को समा दिया
जी।
इसमें लक्षण भी है, गुण भी है और वेदन भी है, तीनों है। लक्षण से, गुण से और वेदन से जो आत्मा को जानता है उसको आत्मज्ञानी कहने में आता है। कृपालु देव का वचनामृत। अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा परिणमन में आता है तो आत्मज्ञान की प्राप्ति उसी वक्त हो गई। क्यों? कि अनुभूति स्वयं निर्विकल्प है और उसमें जो स्वभाव है वही भी निर्विकल्प है, दोनों निर्विकल्प है। तारतम्यता से, जोर से ये परिणमन आता है तो विकल्प उत्पन्न स्वयं नहीं होता, स्वयं ही विकल्प उत्पन्न नहीं होता उस वक्त। उसको निर्विकल्प अनुभव कहो, वहां विकल्प मिटाने का कोई दूसरा प्रयत्न करना पड़ता नहीं है। ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होने होता हुआ यह आत्मा जैसा जाना है वैसा ही है, ऐसी प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान उदित होता है। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान हुआ, कभी श्रद्धान पूर्वक ज्ञान नहीं होता। यहां भी क्रम सूचित किया है, मोक्षार्थीपना भी पहला क्रम का विषय है और ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होना वो भी क्रम का विषय है। क्योंकि जो चीज ज्ञान में नहीं होती उनका श्रद्धान हो ही सकता
नहीं,
कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहीं हमारे मुमुक्षु ऐसे भी विचार करते हैं, पहले दृष्टि करो, पहले दृष्टि कहाँ रखें है वो बात करो, दृष्टि हम कहाँ रखें। दृष्टि की बात ज्ञान के बाद आती है, पहले दृष्टि की बात कभी आती
नहीं है।
दृष्टि तो चतुर्थ गुण स्थान के पहले समय के पूर्व मिथ्या है, ऊंधी पड़ी है। तो दृष्टि कहाँ रखोगे, जो तो पड़ी है वो पड़ी ही है। तो सलटेगी कब? के स्वानुभूति होगी तब, इसके पहले वो सलटने वाली नहीं है।
बराबर है।
उल्टी पड़ी हुई दृष्टि को सलटाने में स्वानुभूति एक ही कारण और साधन है, दूसरा कोई कारण और साधन तीन काल तीन लोक में
नहीं है। बराबर
है। एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए दृष्टि सलटाने के लिए दृष्टि में कुछ नहीं करना है, ज्ञान में जो भी करना है वो करना है।
बहुत अच्छी बात है।
दृष्टि स्वतः ही काम करने लग जाती है, पहले कमजोर हो जाती है फिर सलट जाती है। फिर से कि ऐसे आत्मज्ञान से, मैंने अनुभव रूप आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाला श्रद्धान का उदय होता है, प्राप्त होता हुआ श्रद्धान का उदय होता है। वो श्रद्धान कैसा है? तो श्रद्धान भी निर्विकल्प है, प्रतीति भी निर्विकल्प है, लेकिन यहाँ उनको विकल्प गोचर करके वचन गोचर किया है, इतनी बात लेना। इसलिए वहां न वचन लेना न विकल्प भी लेना, ये भी परिणमन का विषय है कि जैसा यह आत्मा अनुभव में आया, जाना मैंने वेदन में आया, वेदन पूर्वक जानने में आया, वैसा ही है। ये प्रतीति का लक्षण है, वैसा ही है ये श्रद्धान का लक्षण है। ऐसा जिसका लक्षण है वो ऐसा श्रद्धान उदय होता है तब, तब फिर चारित्र की बारी आती है। इसके पहले चारित्र की बारी नहीं आती। तब समस्त अन्य भावों को का भेद होने की होने से निशंक स्थिर होने का सामर्थ्य प्राप्त होने के लिए होने के कारण से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है, वो आत्मा का आचरण आत्मा को साधता है, विकल्प और शरीर आत्मा को साधता नहीं है। ऐसे इस प्रकार से साध्यात्मा की सिद्धि की रीत है या प्राप्ति है, इसी विधि है, तीन काल में दूसरी विधि नहीं है। अब जो चारित्र का विषय लिया है आचरण का, वो थोड़ा विस्तार से लेने योग्य है, तो कल के स्वाध्याय में वो अंतिम चारित्र का पद लेंगे। यहाँ तक रखें, समय हुआ है। पृष्ठ संख्या 85, पृष्ठ का अंतिम पैराग्राफ है। चारों अनुयोग में यानी जिनवाणी में अनुयोग अनुसार विषय और सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। जैसे कि द्रव्यानुयोग में द्रव्यानुयोग के पदार्थ के वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, तो चरणानुयोग में गृहस्थ के और मुनि के आचरण के सिद्धांत हैं, करणानुयोग में कर्म संबंधित सब सिद्धांत हैं। ऐसे सभी अनुयोग में अनुयोग अनुसार विषय भी है, कथानुयोग में कथा का विषय है और सिद्धांतों का प्रतिपादन है। ऐसा होने पर भी सर्वत्र मैंने चारों अनुयोग में अध्यात्म तत्व का प्रतिपादन करने का आशय रहा हुआ है। चारों में अध्यात्म तत्व तो है ही, पर चारों अनुयोग यानी समग्र जिनवाणी उसमें अध्यात्म तत्व का प्रतिपादन करने का आशय है, इरादा है, और यही इरादा से माने का प्रतिपादन है या हेतु है। वाणी की जो हेतु है वो यही हेतु पूर्वक चल रही है। ऐसे जो हमारे अंग प्रवाद है उसमें एक हेतु प्रवाद नाम का भी अंग है, ज्ञान प्रवाद, हेतु प्रवाद, और सारे जिनागम में अध्यात्म तत्व तो चारों अनुयोग में रहा हुआ है, पर वही चारों अनुयोग का क्रीम है। क्रीम है मैंने अच्छे से अच्छी बात कही हो तो वो अध्यात्म तत्व का विषय है। पारमार्थिक असरलता के कारण से ये जिनवाणी का अध्ययन करने वाले में भी जब पारमार्थिक असरलता होती है तो उस कारण से जीव को आगम और अध्यात्म में विरोध भासित होता है। आगम किसको कहेंगे और अध्यात्म किसको कहेंगे वो थोड़ा स्पष्ट कर दें। आधार लेने योग्य, अवलंबन लेने योग्य ऐसा जो हमारा मूल स्वरूप है वो अध्यात्म तत्व है, और उस स्वरूप का अवलंबन लेने वाले परिणाम है समस्त जीव के समस्त गुण के परिणाम अपने स्वरूप में एकाग्र होता है, वो आध्यात्मिक परिणाम है, क्योंकि उसका अवलंबन वो लेता है। अध्यात्म का विषय वहां समाप्त तो होता है, वह अध्यात्म की मर्यादा है। इसको छोड़कर जितने भी करणानुयोग के, चरणानुयोग के, द्रव्यानुयोग के जो भी सिद्धांत है उसको आगम कहने में आता है। बनारसी दास जी कहते हैं, कि अध्यात्म का विषय, अध्यात्म का आधार आत्मा है और आगम का आधार परमाणु है, ऐसा करके लिया है, क्योंकि उसमें परमाणु की चर्चा आएगी। आगम में परमाणु की चर्चा है, अध्यात्म में आत्मा की चर्चा है, ऐसा उन्होंने जो वचनिका लिखी है, परमार्थ वचनिका लिखी है, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पीछे छपी हुई है, उसमें वो बात उन्होंने ली है। वहां से उनके शब्द में ले अपन थोड़ा। परमार्थ वचनिका बनारसी दास जी रचित, आगम अध्यात्म का स्वरूप, वस्तु का जो स्वभाव उसको आगम कहते हैं, तो वस्तु के स्वभाव के जो सिद्धांत है वो आगम कहते हैं, और आत्मा का जो अधिकार है उसको अध्यात्म कहिए। आगम और अध्यात्म रूप भाव वो आत्मद्रव्य का जानना,